अब आगे देखिए डांट है, हल्की सी डांट है आयत 32 में। आप देख लीजिए, कुल मन हर रवा, कह दीजिए किसने हराम की जीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिबादिही, उस जीनत को जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली थी। वह तय्यिबात में ना रिस्की, और तय्यिबात को भी रिस्क में हराम कर दिया। खबरदार बिल्कुल हराम नहीं करना, क्योंकि कुल हिया लिल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया, कह दीजिए ये तो ईमान वालों के लिए खालिसतन यौमल क़ियामा, दुनिया की जिंदगी में भी हैं, लेकिन क़यामत के दिन तो सिर्फ उनके लिए होंगी। कज़ालिका नुफस्सिलु लायाति लिक़ौमिन यअलमून, इसी तरह हम अपनी आयतें जानने वाली कौम, इल्म रखने वाली कौम के लिए वाज़े करते हैं। ये किन लोगों पे तनकीद है जो मजहब के दाम पे, दीन के नाम पे खुद को बिल्कुल दूसरे एज पे ले जाते हैं, और लोगों को ये फीलिंग आने लगती है कि ये सब हराम है या नापसंदीदा। आप पहने ना पहने, दूसरों को पहनने दें। आपको शौक है ज्वेलरी का, नहीं है, दूसरे अगर हदों में रहते हुए करते हैं तो ठीक है। यानी यहाँ बिल्कुल जो पीछे किरदार था उसी के ऊपर एक तनकीद है कि तुम ऐसे काम ना करो कि जिसमें अपने आप को रखो। देखिए कि एक जीनत वो है जो लिबास की होती है और एक इंसान के अंदर की होती है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि दुनिया में इन सारी चीजों को एक जरूरत के तहत पे ले लो, और क्यामत के दिन तो ईमान वालों के लिए ये खालिस होंगी। आपको पता है कि हदीस में आता है कि जन्नत की औरत वो लिबास पहनेगी कि जिसका दुपट्टा अगर आसमान से लटका दिया जाए तो उस पे लगे हुए जो नगीने और हीरे जवाहरात है उसके आगे सूरज की रोशनी दब जाए। अल्लाह ने जब पहनाना है तो फिर वो क्या होगा, और औरत का हुस्न कितना होगा। रिवायात में आता है कि अगर जन्नत की औरत दुनिया में झांक ले तो उसके जिस्म की महक, खुशबू और उसके हुस्न से पूरी दुनिया में महक आ जाए। तो अल्लाह तो जमील है, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। दिल बड़ा रखे, दिल खुले रखे, कभी जाहिरी चीजों में अपने आप को ना अटकाए, लेकिन इन सारी चीजों को लेते हुए सिर्फ जाहिर की खूबसूरती ना रखे। देखिए एक बात और भी कह दूं, मौजू ऐसा है कि जीनत लिबास की भी होती है और जीनत दिल की भी होती है। खूबसूरत दिल वाला बंदा आम चीज भी पहनेगा ना तो खूबसूरत लगेगा, और दिल में कदूरते, माथे पे तेवरी और ऐसी कराहत है तो अच्छे से अच्छा लिबास भी नहीं जचेगा। हिस्सी और मानवी दो तरह की जीनत होती है। यहां तो जाहिरी जीनत की बात है ना। सूरत अल हुजरात में अल्लाह ताला कहते हैं ज़य्यना क़ुलूबुहुम, दिल की जीनत है, ईमान दिल को खूबसूरत कर देता है। इसलिए जब आपका अंदर खूबसूरत हो जाएगा ना तो आपका बातिन कैसा होगा। आपको सहाबा किराम की आदत पता है पहनने ओढ़ने के मामले में? ये बताइए कि हजरत उमर कैसे कपड़े पहनते होंगे। हजरत उमर को अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं था, पैबंद लगा के पहनते थे अपने कपड़ों को, इतना जलाल था। और उमर वो था जिसको देख के शैतान डर जाता था, भाग जाता था। कौन सी खूबसूरती, जलाल कौन सा था वो उमर जिसके बारे में एक नॉन मुस्लिम की राय कि ये वो उमर है कि जिसने कैसरो किसरा की नींदें उड़ाई हुई है, वो कितने सुकून से सो रहा है। बड़े इजी गोइंग थे, कुछ सहाबा को बहुत अच्छा पहनने का शौक था। तो ये पर्सनैलिटीज होती है, इससे कोई तकवा का ताल्लुक नहीं है। ना कभी को किसी को इस पे चखे, ना किसी को इस पे परखे, मुनासिब तरीके से रखे इन सारी चीजों में। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक बात जो पिछली आयत के अल्लाह कहते हैं खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, अच्छा पहनो। अल्लाह कहते हैं नमाज के वक्त अच्छा पहनो। हम अमूमन अच्छा कपड़ा पहनना हो तो कहते हैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर कपड़े बदलूंगी, और खास तौर पर जब हमने 8 बजे रात को शादी के लिए निकला। रिंकल्स अल्लाह के लिए क्या और अल्लाह के बंदों के लिए क्या। अच्छा ये मौजू कभी भी नहीं समझ आया था, ना आएगा आपको भी जब तक एक बात ना समझ आ जाए, मुझे बता ही देनी चाहिए आपको। असल में ये सारा जो लिबास पहनना ओढ़ना ना, इसका तलक सिर्फ लिबास और ये पैसों शैसों से नहीं है, और इसका ताल्लुक लोगों की अहमियत, लोगों के डर से। अगर आपके दिल में लोगों की बड़ाई है ना तो आप ना चाहते हुए भी इन चीजों से कुछ ना कुछ आगे चले जाएंगे। और लोग छोटे छोटे पुतले हैं ना आपकी नजरों में, कुछ भी नहीं है, मिट्टी के धुएं। मिसाल अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अपना बाया उतार भी दूं, आप सब देख लेंगे ना। मैं सोचूं आपको देखना आप क्या है मेरे लिए, तो आप मैं मुझे गर्मी लगी मैं उतार लूंगी, मेरा दिल चाहे उतारू, मेरा दिल चाहे मैं कभी नहीं उतारूंगी, मैं कहूंगी देख लेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे, केयरलेस ब्यूटी होती ना एक, तो लोगों को छोटा करें। आप घर में जाके सोचें, कल रात फंक्शन में गई, मैंने इतनी मेहनत की, इतना किया, दर्द भी हुई, कमर में हील भी पहनी, जो भी करते हैं, मैं बुरा नहीं कह रही इसको, जो भी करते हैं, 200 लोग थे महफिल में, उन 200 ने देखा, क्या अहमियत है उनकी मेरी नजर में, पता नहीं उनका अल्लाह की नजरों में क्या मुकाम है, वो अल्लाह की नजर में पता नहीं कोई उनकी नमाजें हैं क्या नहीं है, तो मैं इनके लिए बड़ा बनू। बाद बस यक सर्दियां होती हैं, सिस्टर जो है वो ऑर्गेंजा और शिफॉन के कपड़े पहन के शादी हालों में फिर रही होती है, बाद में कहती हैं ठंड लग गई, होता है ना, तो लोगों को उनकी जगह पे कर दे, बल्कि अल्लाह के लिए पहने। मैंने आपको एक दफा सुनाया था शायद, या किसी और को सुनाया होगा, कि एक सिस्टर थी, रात को तहज्जुद के लिए जब उठती तो अपना बेहतरीन जोड़ा, शादी का जो भी अच्छे से, उसको अच्छी तरह साफ नहाती धोती, फिर खूबसूरत कपड़े पहन के तो फिर इबादत में खड़ी होती, कहती अल्लाह मैंने ये कपड़े तेरे लिए पहने हैं। आखिरी बात करती हूँ फिर आगे चलेंगे, कि जैसे आपको कोई कपड़ा देता है, कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा दे या कुछ भी, जब आप उसको पहना देखते हैं, या आप किसी को देते हैं, चले आप किसी को कुछ दे, फिर आप उसको उन कपड़ों में देखें या उस ज्वेलरी में देखें या वो चीज पहनी देखें, कैसा लगता है, गुस्सा आता है, पहन लिया देखो इसने, खराब कर देगा, खुश होते हैं ना। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह तूने दिया है तो तू पहना देके क्या कहेगा, खुश होगा, तो अल्लाह को दिखाने के लिए पहने। अब आप क्या करें, अकेले में ज्यादा पहने और लोगों में कम पहने, फिर देखिएगा आपको कितनी लज्जत मिलेगी। आगे चलते हैं आयत नंबर 33। قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، कह दीजिए मेरे रब ने तो हराम करार दे दिया बेहयाई की बातों को, ख्वाह वो ऐलानिया हो या ख्वाह छुपी हुई हो, वल इस्म वल बग्य बगैर अल्हक की, और हराम किया इसने गुनाह को और नाहक ज्यादती को, वान तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज्जिल बिही सुल्ताना, और ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाओ उसको जिसकी उसने कोई दलील नाजिल नहीं की, और वान तकूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मनसूब करो जिसका तुम्हें खुद भी इल्म नहीं है। क्या समझ आया, लिस्ट बनाई आपने ऊपर सारी बातें करके, अब ये बिल्कुल हमारे सबक का एंड है, बल्कि टॉपिक एंड इधर ही हो रहा है, आगे जो है वो टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कि अल्लाह ने क्या हराम दिया। नंबर 1 2 3 करिएगा, ये हुरुमात की लिस्ट है, अल्लाह सुबहान तआला की निगाहों में क्या हराम है। नंबर 1 अल फवाहिश, फुहश की जमा, ऐसी बुराई जिसका असर दूसरों पे भी जाए, अल्लाह को फुहश चीजें नहीं पसंद, ये हराम है, ठीक है। दूसरी चीज मा जहरा मिनहा वमा बतन, वो फहाशी जिसका जाहरी असर भी दूसरों पे पड़े और बातनी भी हो, इन दोनों का फर्क क्या है आप बता सकते हैं। जाहरी में वो सब बेहुदा लिबास और वो सारी चीजें जो किसी सोसाइटी में गलत चीजों को आम कर दें, और बातनी फुहश क्या है, गंदी सोचें, बैड थॉट्स, अकेले में बैठ के गंदगी में गंदी चीजें देखनी सुननी और उसके साथ इंसान का ताल्लुक होना, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज वल इस्म, इस्म वो गुना जो बंदा जानबूझ के करे, रुक सकता है लेकिन ना रुके, ठीक है, ये भी नहीं अल्लाह को पसंद। नेक्स्ट फोर्थ वल बख्श, सरकशीरी, बैलिये सोना, बगावत, अल्लाह को बगावत नहीं पसंद, वल्लाह ही बाज दफा लगता है कि इंसान अपने सिर्फ नुमाइश और हुसन के लिए अल्लाह का बागी बन के घर से निकलता है, हर बंदे को माइल करता है, अल्लाह ताला कहता है मुझे बगावत नहीं पसंद, बगैर अल हक की, हक के सिवा, यानी जहां हक नहीं है बड़ा बनने का तुम बड़े बनते हो, और क्या हराम है, वान तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज्जिल बिही सुल्तानन, यानी शिर्क हराम है। यहाँ शिर्क की बात क्यों आ गई, ये जो कुछ करते थे ना, ये सारा कुछ असल में दीन के नाम पे करते थे, अपने बड़ों का नाम लेकर। और अगली चीज वान तकूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, बगैर इल्म के अल्लाह की तरफ बातों को मंसूब करना, ये है हुरुमात की लिस्ट, ये अल्लाह को चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, तुम अपने आप को इन चीजों से बचा लो, फिर देखेगा। आप कह ले कि दीन की असल तस्वीर पेश की जा रही है कि अल्लाह की नेमतों को जायज तरीके से इस्तेमाल करो, ये भी इबादत है, इंसान को ये अच्छा लगता है, अल्लाह ताला चाहते हैं। अब आप देखिए यहाँ खाने पीने की इसराफ की बात हुई है, तो 2 3 चीजें नोट कर लीजिए जल्दी से, कुलू वशरबू वला तुसरिफू में, कि लिबास के साथ साथ खाने पीने का भी ख्याल रखो। खाने पीने में जब इसराफ होता है ना, तो अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाता है बंदा। बाज लोग दीनदार होने के बावजूद खाने के मामले में इसराफ करते हैं, जाया कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा पका लेते हैं। इसराफ क्या है, नंबर 1 हलाल से ना हो, नंबर 2 वक्त बेवक्त खाना, नेक्स्ट, पेट भर के खाना। फिर गजाइत से बेकार हो यानी सिर्फ टेस्ट कॉन्शियस होना। फिर इसी तरह हर वक्त खाना, जंक, अब ये खा लिया स्नैकिंग, कुछ भी कह ले, कुछ भी और इस तरह की बातें। इसी तरह देखिए कि खाने पीने में इसराफ क्या है कि इंसान खाने के बाद उससे जो ताकत मिलती है उसको गलत चीजों में रखे। हारून रशीद अपने दौर के एक तिब्बी तबीब भी थे, इनके पास एक ईसाई शख्स आया, कहने लगा तुम कहते हो कुरान में हर सवाल का जवाब है लेकिन कुरान में मुझे तिब के बारे में कोई बात नहीं मिली। तो कहा कि है क्या, कुलू वश्रबु वला तुसरिफु, खाने पीने में ज्यादती ना करो। कहा ये आधी तिब है, हदीस में आता है कि आपने ये बातें जब सुनाई तो एक शख्स, वो भी हकीम था अपने दौर का, तो उसने कहा कि अब लोगों को मेरी जरूरत नहीं रही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पे अमल करेंगे तो बाकी सारी चीजें जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जब लोगों के रवैये हदों से गुजर जाते हैं तो उस पे क्या होता है, आयत 34 से अब हमारे लेसन के अंत तक एक ही टॉपिक चलेगा, मैं एक स्ट्रेच में आपके सामने रखूंगी। वली कुल्ली उम्मते नजल, और हर कौम के लिए एक वक्त मुअय्यन है। ये क्या, इस दुनिया में रहने का वक्त। देखिए जब भी किसी कौम की तरफ कोई रसूल आता तो एक मुकर्रर मुद्दत तक इस कौम को मोहलत मिलती कि नबी उनको पुकारे अल्लाह की तरफ और ये उस पर लब्बाई कहें, सही रास्ते पे आ जाए। जब लोग उस वक्त के अंदर नबी की दावत पे लब्बाई ना कहते तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाता था। ये बात तो क्लियर है ना, पिछले नबियों के साथ ऐसा हुआ। मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक झुटलाया, फिर अल्लाह ताला उनको वहां से मदीना ले जाता है लेकिन बजाहर पकड़ नहीं हुई, उसकी तरफ जिक्र है कि तुम आखिरी नबी की उम्मत हो इसलिए तुम्हें ढील ज्यादा दी जा रही है कि तुम आज बदल जाओ, नहीं बदलोगे जब तुम्हारी पकड़ आएगी। और वो बदर में ही आ गई, मदनी दौर के बिल्कुल आगाज में अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ये ना सोचो कि तुम अल्लाह से दूर हो, फइजा जाअजलुहुम, यानी ये ना सोचो कि अल्लाह की पकड़ से दूर हो, बल्कि फइजा जाअजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, फिर जब इनका वो मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो ना एक घड़ी पीछे हट सकेंगे ना आगे सिरक सकेंगे। ये वही बात है जो सूरत बकरा में आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजते हुए कही गई थी, فَإِمَّا هُدًا فَمَن خُدَايَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ। इसीलिए आयत 35 में कहा या बनी आदम, कितनी दफा पुकारा है आपको अल्लाह ने आज, चौथी दफा, ए बनी आदम, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, जब कभी तुम्हारे पास रसूल आए तुम्ही में से, या कुसूना अलैकुम आयाती, फिर वो तुम पर मेरी आयतें पढ़े, फमन इत्तका, बस जो कोई तकवा की रविश इख्तियार करे, बस लखा, और इस्लाह कर ले अपनी पिछली जिंदगी के तरीके छोड़ दे, फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उस पे कोई खौफ नहीं और वो गमजदा ना होंगे। ये है खुश रहने का रास, अच्छे कपड़े पहन के भी आप खुश नहीं रहेंगे, अच्छे खाने भी बास दफा खुशी नहीं देते, लेकिन अल्लाह की आयतों को मानना, रसूल की दावत पे लब्बैक, ये सच्ची खुशी देगा। देखा जाए तो हम ये सब कुछ अपने नफ्स की खुशी के लिए करते हैं ना, और सच्ची बात है अच्छे कपड़े पहन के खुशी होती है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा खाना खा के भी खुशी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखे कितने परसेंट अच्छे कपड़े पहन के आप खुश आते हैं घर में। अक्सर शादियों से मैंने औरतों को देखा डिप्रेस आती हैं, किसी ने एक बात कह दी रोती भी आ गई, सास ने कोई कड़वी बात कह दी चलो गुस्सा आ गया, मियाँ ने डांट दिया कि देर इतनी कर दी है मैं जा रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन के भी औरतें रो रही होती हैं। लेकिन मैंने कुरान की आयतों को पढ़ने के बाद जो दिल के अंदर सुकून और खुशी है इसको बहुत कसरत से लोगों के चेहरों पे देखा है, तो असल खुशी इसमें मिलेगी। और जो नहीं करेंगे आयत 36 वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाएंगे और तकबर के बिना पर इनको रद्द कर देंगे, उलाइक असहाबुन नार, वो आग के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। कोई बता सकता है इस आयत के यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है, कितने अहकामात पीछे में दिए। अब तकब्बुर आ गया, अगर अपनी बड़ाई का एहसास, सेल्फ प्रेजिंग का एहसास अगर इन आयतों पे अमल से रोक लेता है तो इंजाम बड़ा बुरा है। आयत 37, फमन असलम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाही कसीबा, जो कि अल्लाह पे झूठ खड़े, वह कज़्ज़ब भी आ जाती ही और उसकी आयतों को झुटलाए, उलाइका यनालहुम नसीबहुम मिनल किताब, ऐसे लोगों को दुनिया में इनका हिस्सा मिलता रहेगा जो लिखा हुआ है, यानी जो उनके नसीब में है वो उनको मिलेगा। या मिनल किताब से क्या मुराद है? तकदीर, कतबा, यानी जो उनकी तकदीर में लिखा हुआ दुनिया में मिलता रहेगा। हद तैजा जात हम रसूलुना, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे रसूल आ जाएंगे, भेजे हुए कौन? मौत के फरिश्ते। या तवफ़ऊ न हम, जो उनको फौत करेंगे। कालू ऐ नमा कुन तुम तदू नमिन दू नल्ला, पूछेंगे वो किधर है जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते थे, वो सब बड़े लोग तुम्हारे आज काम क्यों नहीं आ रहे जिनको खुश करते थे। قَالُوا دَلُّوا عَنَّا, कहेंगे वो सब हमसे खो गए। وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, और अपने ही नफ्सों के खिलाफ गवाही देंगे कि أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ, कि वो काफिर थे। सारी दुनिया को भी खुश कर लेंगे ना, लेकिन हमारी मौत के वक्त कोई हमारे काम नहीं आएगा। फरिश्तों को देखकर इंसान इस तरह ढीला पड़ेगा। अल्लाह ताला 38 में फरमाते हैं क्या कहा जाएगा मौत के बाद, قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار, कहा जाएगा अच्छा शामिल हो जाओ जिन्नों और इंसानों की इन उम्मतों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं आग में। हर कौम का एक हिसाब है। मुजरिमों को जब जहन्नुम में झोंका जाएगा, पहली नस्ल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, नस्ल दर नस्ल है। अब आप बिल्कुल इमेजिनेशन में जहन्नुम को लाएं, आग है और जो नए नए अजाब है, गर्मी भी है, बदबू भी है और ठुसे में लोग। पहले से बहुत रश था, क्राउडेड था, अब आगे क्या हुआ? कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, जब भी कोई उम्मत यानी गिरोह जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने जैसी दूसरी उम्मत पर लानत करेगी। हत्ता इज़्ज़दारकू फीहा जमीयन, यहाँ तक कि जब वो सब उसमें गिर पड़ेंगे। कालत उख्राहुम लिउलाहुम, तो इनके पिछले अपने अगलों से कहेंगे या उनके बारे में कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, हाउलाई ये हैं वो लोग, अदल्लूना जिन्होंने हमें गुमराह किया। ये थे ट्रेंड सेटर्स, हम इनके नक्शे कदम पे चलते थे, हम इनकी वॉक पे चलते थे, हम इनके बनाए हुए ट्रेंड्स चलाते थे, इनके फैशंस को अपनाते थे, ये हमारे तौर तरीके खानदानी थे, हम इनके नक्शे कदम पे थे। फाती हिमजा बंदे फमिनन्नार, तो आज इनको दुगना अजाब दे आग में से। देखिए जब इंसान जहन्नुम में जाएगा तो उसको लगेगा मेरी इस तबाही को किसी और के जिम्मे डाल दिया जाए, तो अपने से पहले ट्रेंड सेटर्स के जिम्मे लगाएंगे। ये फैशन इन्होंने निकाला था जिसमें घुटने नंगे करो, ये फैशन इन्होंने निकाला था जिसमें कंधे खोल दो, ये कर दो, अल्लाह इन सबको दुगना अजाब दे। जवाब सुनिएगा, काल अली कुल्ली देफुन, कहा जाएगा सबके लिए दुगना, तुम्हें अकल नहीं थी, आंखें सोच के चलते, अपने सदर का ख्याल करते। बला किल्ला तालमून, तुम्हें शऊर ही नहीं है, तुमने इल्म नहीं लिया, जानते नहीं है, शऊर से दूर थे, तभी तो आंखें बंद करके अंधी तकलीद करते थे अपने बड़ों की। अब जरा सुनिए पहले क्या कहते हैं दूसरों को, आयत 39 आखिरी आयत है, वकालतुलाहुम लिउखराहुम, अब वो तो चुप नहीं रहेंगे ना जिन पे इल्जाम लगा है, तो इनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे, फमा काना लकुम अलैना मिन फज़लिन, तुम्हें भी तो हम पर कोई फजीलत हासिल ना हो सकी। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकसिबून, बस अब मजा चखो उन अज़ाबों का जो अमल तुम करते थे उसके बदले। जहन्नुम के अज़ाबों में एक अज़ाब झगड़ों का अज़ाब है, वो घर भी जहन्नुम बन जाते हैं जहाँ झगड़े होते हैं। जहन्नुम ही जहन्नुम में जाकर अपनी जान छुड़ाने के लिए ख्वाहिश ये करेंगे कि उनका जुर्म किसी और के जिम्मे आ जाए। तो जिन लोगों ने ट्रेंड सेट किए होंगे, जब लोग उनकी तरफ बात करेंगे कि हम तो इनके नक्शे कदम पे चलते थे, ये हमारे बड़े थे, इन्होंने हमें ये कहा था, तो उनके जवाब में वो कहेंगे कि तुम बड़े बनकर क्या कर चुके, तुम्हें अल्लाह ताला ने अकल दी थी, शऊर दिया था, लिहाजा पड़े रहो। तो आप देख लीजिए कि क्यामत के दिन कोई हमारी गुमराही का जिम्मा नहीं लेगा, जो भटकेगा वो खुद भटकेगा। सूरत मायदा की एक आयत याद आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा अख्तदैतुम, کیا ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یدر من دل، تمہیں نہیں تکلیف دے گا وہ جو خود بھٹکا ہوا ہے، شرط ہے کہ اذا اہتدیتم، تم دل کی تختیوں پہ اس آیت کو لکھ لیں، ساری دنیا کو آپ اپنے بھٹکنے کا الزام آج دے لیں، میاں شوہر بچے بیوی، اس کی خوشی اس کی ناراضگی، ان کا منہ سوج جاتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا، میں اس لیے قرآن نہیں پڑھتی، ساس کو خوش کر لوں، بہو کو خوش کر لوں، ان کے بچے رکھ لوں، کوئی آپ کا ذمہ کل نہیں لے گا، واللہ ہی آج آپ اپنے بچوں کا نام لے کے اس دین سے رکھتے ہیں نا، گھر کل بچے صاف منہ پہ انکار کریں گے ہم نے کب کہا تھا، یا پڑھ لے تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت تو نہیں تھی، آج تو یہی ہے، تو دعا کیجئے کہ اس رب کو جس سے سب کچھ لینا ہے، اگر بچوں کی بھی کوئی خوشی لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے نا، شوہر بھی اگر ہم سے خوش ہوگا تو اللہ کی وجہ سے ہوگا نا، تو اس کے ہاتھ میں سب سرے ہیں، آپ اس کے بن جائیے، باقی باتیں ساری آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے اور ہمیں خود گائیڈ کر دے، اور جو بھی ہم نے سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.